नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट पदम कुमार है। मैं दिल्ली NCR में वकालत की प्रैक्टिस करता हूं और वर्कर्स यूनिटी ट्रेड यूनियन का सदस्य हूं। मोबाइल वाणी साझा मंच के माध्यम से मनोहर लाल कश्यप जी का प्रश्न प्राप्त हुआ कि जब वो बहादुरगढ़ की रिलैक्सो फैक्ट्री में एक श्रमिक भाई से बात कर रहे थे, तो उनसे शिकायत प्राप्त हुई कि उनके 46,900 कुछ रुपए रोक लिए गए हैं। और जब उसकी शिकायत उन्होंने ठेकेदार से की तो वहां भी कुछ नहीं किया गया। काफी देर तक हुज्जत करने के बाद उनको चेक से पेमेंट दी गई और चेक से पेमेंट देने के बाद भी वो चेक बाउंस हो गया। तो इसमें कई चीजें हैं। अच्छा, इसके अलावा भी वो बताते हैं कि इसके बाद वो पुलिस में शिकायत करने भी गए और वहां भी कुछ नहीं हुआ। तो ये मनोहर लाल कश्यप जी का ये जो सवाल है, ये कई समस्याओं को एक साथ उठाता है और कवर करता है। तो इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई कंपनी किसी कर्मचारी को ठेके पर रखती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन और एबोलिशन एक्ट के अनुसार अवैध है, कानूनन गलत है, और जिसकी शिकायत श्रम कार्यालय में की जानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ठेकेदार का जिक्र हुआ है तो वो श्रमिक भाई जरूर ठेके पर ही रहे होंगे। तो सबसे पहला तो कंपनी ने जो गैर कानूनी काम किया है वो यही कि एक श्रमिक को ठेके पर रखा है। किसी भी मेन काम के लिए किसी श्रमिक को ठेके पर नहीं रखा जा सकता है। तो अगर मेन काम के लिए इनको रखा गया है तो वो गैर कानूनी है। नंबर दो, ठेके पर रखने के बाद भी वेतन नहीं दिया गया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अनुसार प्रिंसिपल एम्प्लॉयर श्रमिक की सारी समस्याओं के लिए, उनके वेतन के लिए और उनकी सारी लायबिलिटीज के लिए जिम्मेदार होता है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का मतलब जो कंपनी है, यहाँ रिलैक्सो कंपनी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, ठेकेदार नहीं है। ठेकेदारी में क्या चीज सामने आती है, वो ये होता है कि लेने के टाइम पर कंपनी जो होती है वो श्रमिक की मालिक होती है जब काम लेना होता है, लेकिन जब वेतन देना होता है तब तो वो अपनी जिम्मेदारी से भाग जाती है, कहती है ठेकेदार के पास जाओ, और दूसरी समस्याओं के लिए भी कहती है ठेकेदार के भाग जाओ। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन और एबोल्यूशन एक्ट बनाया गया था। तो यहां पर वेतन भी नहीं दिया है और ठेकेदार बाद में अपनी जिम्मेदारी से भी भाग रहा है, वो भी मना कर रहा है। काफी हुज्जत के बाद जब इनको चेक दिया गया तो चेक देने के बाद भी वो बाउंस हो गया, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत एक अपराध है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत आपको दावा दायर करना चाहिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपके रोहतक के सामने। ये दावा आपको चेक बाउंस होने के 1 महीने के भीतर भीतर ये डाल देना होगा। इसके अलावा आप पुलिस स्टेशन भी गए, जो कि आपने बड़ा ही अच्छा काम किया, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंतर्गत पुलिस को FIR दर्ज करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं किया है। ये बात मैं आपको और भी बताना चाहूंगा कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में अधिकतर थानों में ये जागरूकता ही नहीं है और इसमें FIR दर्ज ही नहीं की जाती है, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसको अधिकतर टरकाने की कोशिश करते हैं, और जहां श्रमिक का मामला आता है तो उसका ये अधिकार भी नहीं पुलिस समझती है कि उसको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी उसके साथ हो सकता है, कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। पुलिस ये मानने को भी तैयार नहीं रहती। तो यहां पर पुलिस की तरफ से भी गैर जिम्मेदाराना बात हुई है, और पुलिस ने अगर FIR दर्ज नहीं की है तो इसकी शिकायत आप ऊपर के अधिकारियों से लिखित में करें और धारा 156(3) CRPC के अंतर्गत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने एक वाद भी दायर करें कि मेरी FIR नहीं दर्ज की गई है। इसके अलावा इस पूरे उसका जो 46,900 कुछ रुपए की बात है, इस राशि को वसूलने के लिए, इस राशि को प्राप्त करने के लिए और दोबारा कंपनी में ज्वाइन करने के लिए Section 2A इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत आप एक डिमांड नोटिस अपने एम्प्लॉयर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मतलब प्राथमिक नियोक्ता के पास में भेजिए, और श्रम कार्यालय में समझौता अधिकारी के पास में भी एक कॉपी उसकी भेजिए और समझौते में जाइए। अगर समझौता 45 दिन के भीतर नहीं होता है तो श्रम न्यायालय में अपना वाद लेकर जाएं और पूरे मामले का ट्रायल चलने के बाद में वहां से न्याय प्राप्त करें। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। धन्यवाद।